نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 64 آیت نمبر 123 سے 134 سورة نساء. لیسن نمبر 64 آیت نمبر 123 to 134 سورة نساء. آیتوں پہ جانے سے پہلے ہم آج کے سبق کا بنیادی تھیم اور جو ٹاپک ہم اس میں کرنے والے ہیں اس کو دیکھ لیں گے اور خاص طور پہ پچھلی سبق کے ساتھ ربط کو بھی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے پچھلے سبق کے ساتھ آج کا سبق جڑا ہوا ہے. اس سبق میں جو چیز ہم بہت ہی خوبصورت طریقے سے دیکھیں گے وہ کیا ہے کہ جب ایک انسان شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنا چاہتا ہے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے, کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ ہم شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ جائیں. پھر اس میں خاص طور پہ خوش فہمیوں کا ازالہ. جب کوئی یہ سوچ لیتا ہے کہ بس میں نے تو ضرور ہی جنت میں جانا ہے تو پھر کیا رویہ سامنے آتا ہے, اس کا تذکرہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سبق میں ہوگا. پھر اسی طرح دوسرا ٹاپک جو اس سبق میں ہم دیکھنے والے ہیں وہ کمزور طبقہ یعنی یتیم اور بیوہ یا جو غریب لڑکیاں ہیں ان کے حقوق کی تھوڑی سی بات ہوگی یہاں معاشرتی حقوق کے ناطے سے. حقیقت میں جنت میں کون جائے گا اس کا کرائیٹیرین ہمیں پتہ چلے گا. پھر اسی طرح شوہر کی بے اعتنائی یعنی بگڑے ہوئے شوہر کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے, پیچھے ہم بڑھ چکے ہیں کہ بگڑی ہوئی عورت کی اصلاح کیسے کی جائے, تو یہاں پہ اب شوہر کی تھوڑی سی کمی بیشیاں جو ہیں اس کو ڈیل کرنا سکھایا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں مرد پر کیا ذمہ داریاں ہیں. اور ایک جو بنیادی چیز ہم اس حصے میں دیکھیں گے وہ ہے للہ ما فی السماوات. ہمارے اس سبق میں تین دفعہ آئے گا اور مختلف اینگل سے آتا ہے کیا اس کی چیزیں ہیں. اللہ کی دھمکی کہ تم میرے نہیں بنو گے تو میں کسی اور کو اپنا بنا لوں گا. اب یہاں سے ہم سبق شروع کریں گے آیت نمبر 123 سے. پچھلی آیات کے ساتھ اس کا ربط ہے. آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیس بیمانیکم ہرگز نہیں ہے تمہاری آرزوؤں پر ولا امانی اہل الکتاب اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر. کیا نہیں ہے؟ کچھ نہیں پتہ چل رہا. بغیر حدیث کے پڑھیے ذرا قرآن کو, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. بس جملہ ایسے بن گیا, نہیں ہے تمہاری آرزوؤں پہ اور نہیں ہے اہل کتاب کی آرزوؤں پہ. اگر ہم حدیث کو ساتھ نہ جوڑیں, کیا نہیں ہے؟ کچھ نہیں پتہ. کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے, سونا نہیں ہے, جاگنا نہیں ہے. تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس آیت کو کیا بتایا. تو یہاں کیا ہے؟ جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے. پیچھے بات ہو رہی تھی جنت کی, اللہ نے عمل صالح اور نیک کام کرنے والوں کو ایمان کی شرط کے ساتھ جنت کی خوشخبری دی. جنت میں جانے کی ہر بندہ خواہش رکھتا ہے اور کچھ لوگ تو اس خواہش کو اپنا حق سمجھ لیتے ہیں. لَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ ہودین او نصارا. یہود نے اپنے وقت میں اس بات کی بحث کی کہ ہم جنت میں جائیں گے. نصارہ کو موقع ملا تو انہوں نے کہا کہ ہم جنت میں جائیں گے کیونکہ اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا ہماری طرف بھیجا. اور امت محمدیہ کا وقت آیا تو انہوں نے کہا ہم چونکہ آخری نبی کی امت ہے تو ہم جنت میں جائیں گے. اسی طرح کے دعوے کرنے والوں کو اللہ کہتے ہیں کہ جنت صرف دعووں سے نہیں ملے گی اور جنت صرف آرزوؤں سے بھی نہیں ملے گی. لیس بیمانیکم, کیوں کیوں نہیں ملے گی؟ اس لیے کہ اگر جنت صرف آرزوؤں سے ملے تو کوئی ایک بندہ بھی جنت سے باہر رہے گا. بتائیے مجھے, ہم میں سے کس کو آرزو نہیں ہے جنت میں جانے کی؟ ایون وہ بھی جو جنت کو نہیں مانتے ان کو بھی جب آپ کہیں ڈو یو وانٹ ٹو گو ٹو پیراڈائز کہتے ہیں لیٹس سی گو ہیڈ چلتے ہیں. تو جنت صرف آرزوؤں سے نہیں ملتی اور جنت صرف دعاؤں سے بھی نہیں ملتی. جنت ملتی ہے آمنوا وعملوا الصالحات, अल्लाह ताला कहते हैं कि इसके लिए ईमान लाने के बाद अमल सालेह करने पड़ते हैं। तुम सिर्फ जन्नत की ख्वाहिश रख के जन्नत में नहीं पहुंचोगे, बल्कि वो काम करो कि जो तुम्हें जन्नत की कीमत दे। देखिए कि इसके अंदर एक वार्निंग है, डरावा। बिला जवाज बेबुनियाद ख्वाहिशों की बात करते हो। तुम भी यहूद व नसारा की तरह आज बड़ी विशफुल थिंकिंग का शिकार हो चुके हो। शिफात की उम्मीद पे तुम गलत काम करो। तुम जन्नत की आस में जहन्नुम को भूल जाओ। अल्लाह की नाफरमानी छोड़ो कोई ना, और वहां सोचो कि अल्लाह तुम्हें जन्नत में ले जाएगा, ये नहीं हो सकता। इसको लिख लीजिए कि ये अल्लाह तला का अटल कानून है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं ना यूनिवर्सल लॉज, कभी नहीं बदलते। ये अल्लाह का एक लॉ है कि लई सभी अमानी युकुम, जन्नत के लिए आमनु और आमिलु सालेहात शरायत हैं। इसलिए कल अहले किताब हटके थे इस ख्वाहिश का शिकार होकर, आज मुसलमानों तुम न बदल जाओ, बल्कि मैयामल सुअय जजा बिही। अल्लाह अकबर। जो कोई बुरा काम करेगा इसकी सजा इसको मिलकर रहेगी। अल्लाह अकबर। ऐसे लगता है कि जैसे कोई कह दे कि ये खा लिया तो अब इसका असर तुम्हारे जिस्म पर पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा तुमको। कैसे? जब ये आयत उतरी तो सहाबे कराम घबरा गए, परेशान हो गए। अल्लाह के नबी जो बुरा काम करेंगे क्या उसको देखेंगे? छोटे से छोटी बात, छोटी से छोटी चीज, इतने परेशान हो गए कि हदीस में आता है अबू बकर सिद्दीक नबी सल्लम के पास आ गए, कहने के अल्लाह के नबी फिर निजात कैसे होगी? जबकि एक एक अमल का बदला जरूर मिलेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, अबू बकर अल्लाह तुझे बख्शे। अच्छा, पहले दौर में हमारे बड़े भी जब किसी का तذکرہ करते थे ना तो कहते थे वो अब्बा जी अल्लाह बख्शे उनको, कहते थे। अब तुम कहते थे ना मरहूम, बख्शे हमें जी, रहम किया हुआ। नहीं, अल्लाह बख्शे, बहुत अच्छा लगता है ये लफ्ज़ सुन के, दुआ भी हो गई जिक्र भी हो गया। तो कहा अल्लाह तुझे बख्शे। अबू बकर, ये सजा वही है जो कभी तेरी बीमारी की सूरत में, और कभी तकलीफ की सूरत में, कभी सदमे की सूरत में, और कभी गम और रंज की सूरत में, और कभी बला और मुसीबत की शक्ल में तुझे पहुंचती है। ये मुसनद अहमद की रिवायत है। यानी जो भी गुनाह करते हो उसके बदले में दुनिया में भी सजा मिलती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हर बुराई करने वाला दुनिया में बदला पाएगा। लिखिए जरा, कितना आसान है गुनाह करना और कितना मुश्किल है उस गुनाह को भुगतना। जैसे आप देखिए कि केक का एक बड़ा सा पीस खाना कितना आसान है, लेकिन उसके बाद जो शुगर लेवल हाई हो जाए, उससे जो दिल पे बोझ पड़े, कोलेस्ट्रॉल हाई हो, वेट बढ़ जाए, वो कितना मुश्किल है घटाना। आप एक हफ्ता केयरलेसली खाएं तो आपके ऊपर इतना वजन चढ़ जाएगा जिसको उतारने के लिए हो सकता है फिर आपको क्या कुछ ना करना पड़े। तो याद रखिए, यहाँ अब आप पर मैं अपने लिए कानून लिखे, आज अगर मैं किसी तकलीफ में हूँ तो अल्लाह के इस वादे की सूरत में हूँ, अल्लाह ताला की इस सुन्नत की सूरत में हूँ कि मैं या अमल सुअन जो जजा भी ही। कभी अपने नफ्स को बेगुनाह ना समझें। इसलिए कभी कोई तकलीफ आए, आती है कि नहीं, देखिए तकलीफें जिस्मानी भी होती हैं बीमारियों की सूरत में, रूहानी भी होती हैं, हत्ता कि बाज दफा दिल बोझल होता है। कभी आपने महसूस किया किसी का दिल बस ऐसे ही उदास होता है? देर इज नो रीजन। आज तो ये फैशन कह लीजिए कॉमन हो गया ना, जिसको लोग कह देते हैं डिप्रेशन है। लिख लीजिए, डिप्रेशन क्या है? मैया मलसुअन यजज़ा बिही। अल्लाह ताला हमारी बहुत सारी बुराइयों को इस तरह दूर करता है। हम कोई गुनाह कर चुके होते हैं, लहर मूड, मजा, मौज मस्ती, कभी कोई एक हफ्ता ऐसा गुजर गया कि जिसमें फन 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 फन, मजा मजा, अब देखेंगे उसके बाद एकदम दिल उदास होता है। कभी आपने एक चीज नोट की, अक्सर लोग कहते हैं ये बात और फील भी होती है अगर इंसान फारिग हो, कि हम पाकिस्तान से होके आते हैं तो आके दिल नहीं लगता। एक तो फितरी बात है, अपनों को छोड़ना, फिर नई जगह पर एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, कहीं भी जाते हैं आते हैं चेंजेस आती हैं ना जिंदगी में। लेकिन हम इसको ये सोचे वो इसलिए कि इतने लोगों में से निकल के अब इधर आ गई हूँ और यहाँ मेरा कोई है नहीं, ऐसा होता है ना। लेकिन अगर आप और मैं अपना थॉट पैटर्न ठीक करें तो क्या सोचना है? मैंने पाकिस्तान में कोई गुना ऐसा किया कि जिसकी जजा या सजा में युजजा भी ही हो रहा है? हदीस में आता है कि इंसान को जो गम पहुंचता है ना, उसके पीछे भी कोई ना कोई उसके गुनाह की वजह होती है। इसलिए कि बच्चे का कोई गम है, रिवायात में यहां तक आता है कि इंसान को अपने बच्चे का जो गम पहुंचता है ना, उसके जरिए अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर रहा होता है। तो जब भी कोई तकलीफ आए, सबसे बेहतरीन वजीफा क्या है? अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। अब आप उसको लंबा कर लें, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता, सैयदुल इस्तिग़फार की सूरत में आप उसको अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु अलैह कह लें, आप उसको ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन कह लें, कुछ लफ्ज़ भी बोल लें, दिल का खुशू और यकीन लाजिम है कि अल्लाह मैंने ये गुनाह किया इसलिए मेरे से ये काम हो गया। एक सहाबी के बारे में आता है कि उनकी तहज्जुद छूट गई, नेकी का काम करते थे छूट गया, तो रोने लगे, कहते हैं कि अल्लाह मुझे दिखा मेरा क्या गुनाह है कि जिसकी वजह से मेरी तहज्जुद छूट गई। तो अल्लाह के जजा देने का एक और तरीका भी होता है कि अल्लाह हमें फिर नेकियों से महरूम कर देता है। हम ऐसे वक्तों में असबाब में उलझ जाते हैं, ये हुआ एक्चुअली एक्चुअली, ये खा लिया था तो ऐसा हो गया, थक बहुत गए तो ऐसा हो गया, बहुत देर बैठे रहे तो ऐसा हो गया, बहुत चल लिया तो ऐसा हो गया, ये करते ना। बस आप देखिए कि हम में से कोई बाजार से होके आता है 5-6 घंटे, घर आके सर में दर्द हुई तो क्या कहेंगे? वो असल में खाना नहीं खाया ना, तो माइग्रेन हो गया, और वो असल में वहां रोशनियां बहुत थी ना, लाइटें थी, तो जिसकी वजह से दिमाग पे हो जाए, ये कुछ करते हैं ना, सच बताएं। वो पैदल चली हो ना तो टांगे थक गई, और वो धूप लगी तो ये हुआ, लेकिन असल बात ये है कि सुवा युज सभी, अल्लाह हमारे उस बाजार में गए जाने के बाद जो गुनाह हमसे हुए, कुछ चाहते हुए कुछ ना चाहते हुए, अल्लाह कहते फरिश्तों इसको इधर ही बाग कर दो, लगाओ इसके सर को दर्द, खूब दर्द दो, तड़पे, कम अज कम आखिरत की तड़प से तो बच जाएगा। इसलिए सहाबे कराम घबरा गए कि ऐसी बातें सुनी कि अल्लाह जो हम करते हैं वैसे होता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन का मामला ये होता है कि अल्लाह सुबहान तआला उसको दुनिया में बदला देता है गुनाहों का, ताकि उसकी बख्शिश हो जाए, क्यामत के दिन पाक साफ उठोगे, और दूसरे लोगों की बुराइयां जमा होती रहती हैं और क्यामत के दिन इनको सजा दी जाएगी। ये तिर्मिजी की रिवायत का खुलासा है। हजरत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल की आयत हम पर बहुत ज्यादा भारी पड़ती है, तो आपने फरमाया कि मोमिन का ये बदला वही है जो मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों और तकलीफों की सूरत में से दुनिया में ही मिल जाता है। एक रिवायत में आता है कि मोमिन अपनी नकदी यानी मनी एक जेब में रखे, फिर जरूरत के वक्त तलाश करे, यानी दूसरी जेब में देखने लग गया या ना मिली, थोड़ी देर ना मिले, फिर जेब में हाथ डाले तो निकल आई, इतनी देर में जैसे सदमा हुआ, इससे भी इसके गुनाह माफ होते हैं और ये भी इसकी बुराइयों का बदला हो जाता है। यहाँ तक कि दुनिया की मुसीबतों में इंसान कुंदन बन जाता है, और क्यामत के दिन इस पर फिर गुनाहों का कोई बोझ नहीं होता। जिस तरह सोने को तपा दे ना भट्टी में तो खोट खपट दूर हो जाती है, इसी तरह मोमिन को अल्लाह ताला दुनिया में तकलीफों में डालकर पाक कर देते हैं। इब्ने मर्दविया की एक रिवायत है कि अल्लाह के नबी से शायद के बारे में पूछा गया, तो आपने फरमाया कि मोमिन को हर चीज में अजर दिया जाता है, यहाँ तक कि मौत की सख्ती का भी। सकरातुल मौत, यह आखिरी सख्ती होती है मोमिन की, इसके बाद अल्लाह ताला उसको नहीं छोड़ते। एक और रिवायत मुस्नद अहमद में है, जब बंदे के गुनाह ज्यादा हो जाते हैं और इन्हें दूर करने वाले बकसरत नेक आमाल नहीं होते, सोचिए बहुत ही प्यारी रिवायत है, जब बंदे के गुनाह ज्यादा हो, इस बंदे और बंदी के नीचे नाम लिखिए अपना, हाँ, दूर करने वाले अमल कोई नहीं, अल्लाह क्या चाहता है कि इस बंदे को कहाँ भेजे? जन्नत में। तो क्या करता है? तो अल्लाह इस पर कोई गम डाल देता है जिससे इसके गुनाह माफ हो जाते हैं। सहाबी कहते हैं कि जब सहाबा पर रियायत मुश्किल गुजरी तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, गम ना करो, ठीक ठाक रहो और मिले जुले रहो, मुसलमान की हर तकलीफ इसके गुनाहों का कफ्फारा है, यहाँ तक कि कांटे का लगना या इससे भी कम तकलीफ। रिवायत में आता है कि सहाबा रो रहे थे और रंज में थे, एक शख्स ने कहा, अल्लाह के नबी हमारी इन बीमारियों में हमें क्या मिलता है? तो आपने फरमाया, ये तुम्हारे गुनाहों का कफ्फारा बन जाती है। इसे सुनकर काब बिन अजरा ने दुआ मांगी, या अल्लाह मरते दम तक मुझसे बुखार जुदा ना हो। लेकिन हज और उम्रे, जिहाद اور نماز باجماعت سے محروم نہ ہوں. اور آپ کو پتا کیا ہوا پھر؟ ان کی یہ دعا قبول ہو گئی. مرتے دم تک ان کو بخار رہا. جب کوئی ان کے جسم کو ہاتھ لگاتا تو بخار چڑھا ہوتا تھا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اللہ نیک لوگوں کی باتیں بھی سن لیتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی سے کہا گیا کیا ہر برائی کا بدلہ ملتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اسی جیسا اور اسی جتنا. یعنی ہر بھلائی کا بدلہ 10 گنا دیا جائے گا. بس افسوس یہ ہے کہ جس کی اکائیاں اس کی دھائیوں پہ غالب آ گئیں. گناہ کیا ہے؟ اکائیاں. ایک گناہ تو ایک کے بدلے ایک. 2 گناہ کریں گے تو 2 سزائیں. 3 کریں گے 3. نیکی کیا ہے؟ 1 کے بدلے 10. 2 کے بدلے 20. 3 کے بدلے 30. تو اکائیاں کیا ہیں؟ گناہ. دہائیاں کیا ہیں؟ نیکیاں. کا افسوس ہے کہ جس کی گناہ ایک ایک کر کے اس کی نیکیوں سے بھی زیادہ ہو گئے. یہ ابن مردویہ کی روایت ہے. اس لیے ہر انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ جب میرے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کے ریسورسز کو ڈھونڈے آپ خود اللہ سے پوچھئے کہ اللہ میرے کس گناہ کی یہ سزا ہے، مجھے معاف کر دے اور مجھے سیدھا سادہ کر دے. تکلیف کتنی ہوتی ہے، جو بیمار ہیں جا کے کبھی ان سے تو پوچھئے. مجھے لگتا ہے سب سے بدترین چیز جو ایک انسان نہیں برداشت کر سکتا نا، وہ اپنی فزیکل ہیلتھ کو خراب ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. ہم جتنا مرضی کے ہیں، ٹینشن ہے، بچوں کی بیماری یا ماں کا غم، باپ کا، ہوتا ہے، لیکن اس وقت میں اور آپ قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہیں، اللہ نہ کرے سر میں درد شروع ہو جائے تو کچھ اچھا نہیں لگے گا. قرآن میں بھی اللہ ہی بھلا دے تو بھول جائے گا، ورنہ ہو سکتا ہے توجہ ہٹ جائے. تو اس کے لیے ایک انسان کو بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے. جو چاہتا ہے کہ اس کو تکلیفیں نہ آئیں، کیا کرے؟ گناہ نہ کرے، غم نہ کرے. جب گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پھر ایسے ہوگا. اور دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل کرنی چاہیے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرتی حسنتم وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا اور اس کو پھر چھوڑ دیا جائے گا. وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اور جس نے برا کام کیا پھر اس کی جزا جب اللہ دے گا تو پھر تم دیکھو گے کہ وہ اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور مددگار نہیں پائے گا. یعنی کوئی ڈاکٹر اس کی بیماری کی وجہ نہیں جان سکے گا، دنیا کا کوئی انسان اس کا مسئلہ حل ہی نہیں کر سکتا. اور حقیقت ہے بعض دفعہ ایک بندہ ایسا پھنستا ہے، ایسا پھنستا ہے کہ اللہ کی بنا رجوع اللہ ہی اس کا علاج ہے. اپنے آپ کو مشکلوں میں ہم کیوں ڈالیں؟ کبھی کوئی گناہ کرنے کو دل چاہے، کرتے ہیں، بے شمار کرتے ہیں، لیکن جب شعوری طور پہ پتہ ہو، جب چوائس ہے، پتہ کہ یہ گناہ ہے، تو کسی انسان کی خوشی کے لیے، کسی چھوٹے کسی بڑے کا غم خوشی کے لیے نہ کریں. کیوں؟ کہ بھگتنے پڑیں گے. مثال ہے، آپ دیکھیں کہ چائے کا کپ ہے نا، اب چائے سب کو اچھی لگے گی جو پیتے ہیں، پھیکی چائے کسی کو اچھی نہیں لگتی. آپ اس چائے میں 2 چمچ بھر بھر کے چینی کے ڈال دیں، اب اس کو پینے والے کو ٹیسٹ تو بہت آئے گا. کتنی دیر؟ ٹیسٹ برڈس 6 سیکنڈ، 6 سیکنڈ کے ساتھ سپس چلتے ہیں ہمارے. چلیے چائے پینے میں 5 منٹ لگے، 5 منٹ انجوائے کر لیا، لیکن یہ 2 چمچ چینی جسم کے اندر کب تک رہے گی؟ ایک بہت پہلے کا میں نے ایڈ دیکھا ہوا تھا، ایسے ہی کوئی سلمنگ والوں کا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایک شوگر اسپون جو ہے آپ کھاتے ہیں تو وہ آپ کے منہ میں 1 سیکنڈ رہتا ہے، آپ کے ایسوفیگس میں اتنا رہتا ہے، آپ کے اسٹمک میں اتنا رہتا ہے، بٹ آپ کی ویسٹ کے ارد گرد پھر ہمیشہ رہتا ہے. سچ یہی ہے گناہ، واللہ یہی گناہ. کبھی کچھ بھی دل چاہے، جس کو کرنے کو پتہ بھی گناہ ہے، تو پھر سوچیں کتنا مزہ آئے گا. آپ دیکھیں جب اس گناہ کی تکلیف ہوگی، سر میں درد ہوگا جب اس گناہ کو بھگت کر. مثال ہے کہ ہم سب ویکینڈ گزار کے آئے ہیں نا، ہو سکتا ہے اس ویکینڈ پہ ہم مجبور کر دیے گئے ہوں، کسی جگہ ایسی چیز سننے کو، ایسی جگہ بیٹھا دیے گئے ہوں، کہیں لے گیا ہو میں کوئی ایسا کام جس کو ہمیں پتہ ہے گناہ، جس میں کوئی شک بھی نہیں، تو وہ مزہ تو اس وقت نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کی جزا میں یجزا بھی ہی ہو جائے تو ہمارا اس وقت وہ مزہ کرکرا ہوا کہ نہ ہوا. اس لیے ہمیشہ بچیں، کیئر کریں. کچھ لوگ ہیں، کلچر ہمارا، پہلے خوب کھاتے ہیں پھر دبلے ہوتے ہیں، دبلے ہونے کے لیے بھی کچھ کھاتے ہیں. کچھ عقل مند لوگ میں نے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کھاؤ ہی تھوڑا. جب کھانا تھوڑا ہے تو آپ دیکھیں جسم پہ بوجھ نہیں پڑے گا، ہماری طبیعت خراب ہو، پیٹ بوجھل ہو، ہم کہتے ہیں اور اب کھاؤ، اب سیمن اب کھاؤ، اب کاوا پیو، اب سونف کھاؤ، الائچی کھاؤ. کچھ کو میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں اس کا علاج ہے کہ کچھ نہ کھاؤ نہ پیو، میرے کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، ایک دن میں ٹھیک ہو جائے گا. बिल्कुल यही कैफियत मैं महसूस करती हूँ गुनाह और नेकियों की भी है। ना गुनाह करो ना मुश्किलों में पड़ो, यही है जिसको फिर अल्लाह सूरत यूनुस में कहते हैं कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून। लोग जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं, उनको कोई गम और फिक्र ही नहीं होता। लोगों को 100 गम, उसको कोई गम ही नहीं। क्यों? क्योंकि ना उसने कोई इतने गुनाह किए कि जिसकी सजा में अल्लाह उसको मुश्किल में डाल दे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कानून किसके लिए है? जो भी हमने पढ़ा, नेक बद औरत मर्द किसके लिए? तो अगली आयत में उसका जवाब है, आयत 124, वमई यामल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा। और जो कोई नेक अमल करेगा, ख्वाह वो औरत हो या मर्द, शर्त एक है, वहुवा मोमिनन, और वो मोमिन हो, साहिबे ईमान हो, फौलाएक यदखुलूनल जन्नता वला युज़लमून नकीरा। तो ये हैं वो लोग जो जन्नत में जाएंगे और इनकी तिल के बराबर भी कोई हक तलफी न की जाएगी। आप मुझे बता सकते हैं ये किस बात का जवाब आया? ये लैस बियमानीकुम का जवाब आया। तुम कहते हो हम मुसलमान होने की वजह से जन्नती हैं, तुम कहते हो हम ईसाई होने की वजह से हैं, आरजुओं में जीते हो, ख्वाहिशों में जीते हो। अल्लाह कहते खुशफहमियों की नहीं, जन्नत का मेयार जो है वो अल्लाह ताला ने ये रखा है कि औरत हो या मर्द हो, काम अच्छे कर ले और अल्लाह पर ईमान रख दे, तो अल्लाह फिर उनको जन्नत में भी दाखिल करेगा और एक खजूर के शिगाफ के बराबर भी उसके ऊपर जुल्म नहीं करेगा, यानी कोई कमी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा। और इसमें अल्लाह ने मुकम्मल इक्वलिटी रख दी। ये है बराबरी की बुनियाद। और यहाँ जो लफ्ज़ है ना फतील, फतील कहते हैं उस गुठली के दरमियान जो हल्का सा छिलका हो। पीछे भी बताया था ना कि तमीर भी आता है, गीली खजूर और सूखी खजूर का फर्क याद कर लें, पतला सा छिलका है, यानी खजूर के बीच में हो। यानी आप इसको इस तरह समझिए कि गुठली के दरमियान एक हल्का सा छिलका होता है जो गूदे को गुठली से अलग कर देता है, ठीक है। और कितमीर कहते हैं इस बीज के ऊपर के लिफाफे को। ये दोनों मुख्तलिफ मानों में आते हैं। मुराद क्या है कि जरा सा भी जुल्म नहीं किया जाएगा। तुम अल्लाह ताला के रिकॉर्ड्स को अपने रिकॉर्ड्स की तरह ना समझो कि तुम्हारा तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है और अल्लाह का भी नहीं। अल्लाह ने तुम्हारी आंख के गुना भी लिखे हुए हैं, तुम्हारे कान के भी लिखे हुए हैं, तुम्हारे दिल के भी लिखे हुए हैं। और जब उस पे पकड़ेगा तो मुश्किल होगी, और उस मुश्किल से बचना चाहते हो तो नेकियां करो। अच्छा, हमारा एक और भी अलमिया देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम अल्लाह की निगाहों से खुद को देखने लग जाएं तो पता नहीं हमारा क्या मुकाम हो। अभी ये इस बहस चल रही है ना, गुनाह किया, आप इसको एक सर्कल बना लीजिए, जैसे एक साइकिल होता है ना, ऐसे एरोज 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 डाल के। मैंने एक गुनाह किया, उस गुनाह की जजा में क्या हुआ? युजजा भी ही, ठीक है, सू किया तो युज्जा भी हुआ। अब उस गुनाह के सजा से निकलने का तरीका क्या होना चाहिए था? या अमल मिन सालिहात, नेकियां करो ताकि मेरी वो तलाफी हो, कंपनसेशन हो उस गुनाह की, मैं मजीद नेकियां करूं, कोई नफिल पढ़ूं, कफारे दूं उस गुनाह से रुकने के, रोजे रखूं, अल्लाह से तौबा तिल्ला करूं, जुबानी नहीं अमली तौबा करूं। जब मैं अमल साले करूंगी तो अल्लाह ताला माफ करके कहते डोंट वरी मोमिन हो गए हो, यदखुलून अल जन्ना। इतनी बात में आप मेरे साथ है? एक साइकिल बना ना, हम गुनाह करेंगे, हो जाएंगे, अल्लाह उसकी पकड़ में हमें पकड़ लेगा। पकड़ से निकलने का तरीका क्या था? कि जाके मजीद नेकियां करो ताकि फौरन उस पकड़ से निकलो। हम अब एक और उल्टा साइकिल चलाते, अब आप एक इस तरह इससे एंटी चला लें। हमने गुनाह किया, गुनाह की सजा में युज्जा भी ही हुआ, युज्जा भी ही जब हुआ अल्लाह ने पकड़ लिया, तो हम उसके नतीजे में कुछ और नेकियां भी छोड़ देते हैं। गुनाह के बाद पकड़ की वजह से फिर नेकियां जो करते थे वो भी छोड़ते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, कहते हैं फोकस ही नहीं है, आंख ही नहीं खुली फजर पे। अब क्या किया कि हमने अल्लाह को और मौका दिया कि पहले गुनाह की अभी सजा खत्म नहीं हुई थी, दूसरा गुनाह भी करते हैं। मैं इसको एक मिसाल से बताती हूँ कि जैसे कोई कैदी है, चोरी की, उसको कैद में डाल दिया। अब कैद में उसको 2 महीने के लिए डाल दिया, 2 महीने की सजा कम हो सकती थी अगर वहां जाके कैद में वो कुछ काम कर लेता, मेहनत करता, अच्छा करेक्टर रखता, हो सकता है 1 महीने में उसको छोड़ दिया जाता, आइंदा चोरी ना करना, दैट्स इट। अब वो चोरी करके 2 महीने की जेल में गया और वहां जाके एक दिन दूसरे कैदी को मुक्का मार के वहां दंगा फसाद कर दिया, अब क्या होगा? 2 महीने की सजा 3 महीने में बदल जाएगी। और इस तरह हो सकता है कि वो आदि मुजरिम बन जाए। हम जब अपनी ही किसी पकड़ पे आते हैं तो मजीद नेकियां कीजिए ताकि अल्लाह जल्दी माफ कर दे, आपकी कैद निकाल दे और आपको दोबारा ले आए। और जब हम उस नेकी को छोड़ देते हैं तो अल्लाह तआला कहते हैं फिर जाओ, वला युज़लमूना नकीरा, हम तुम पे जुल्म नहीं करते। सहाबा किराम के ऊपर कभी कोई तकलीफ ना आती कुछ दिन तो परेशान हो जाते, कहते हमारा रब हमें पाक ही नहीं कर रहा।